प्रिय भाई और बहनों, मैत्रीपूर्ण जय भीम। So, we're looking at the theme of community, society.
तो हम समाज इस विषय पर कुछ बात कर रहे हैं।
I was thinking about this just before I came here.
यहाँ आने के कुछ समय पहले इसके बारे में मैं सोचा।
And I think in my life, my worst experiences have been associated with other people.
तो मेरे जीवन में मेरा सबसे बुरा अनुभव जो है दूसरे लोगों के साथ में रहा।
Other people, they let you down.
दूसरे लोग जो आपको नीचा दिखाते हैं।
They don't do what you want them to do.
वो आप जो चाहते हैं उन्होंने करना चाहिए वो नहीं करते।
Sometimes they oppress you.
कभी-कभी वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं।
And sometimes they are angry and quarrel with you.
कभी-कभी वो आपसे गुस्सा करते हैं, आपसे लड़ाई करते हैं।
Sometimes they even do violence.
और कभी-कभी वो हिंसा भी करते हैं।
So yes, my worst experiences have been associated with other people.
तो मेरा जो अनुभव है, दूसरे लोगों के साथ में जो अनुभव रहा है, वही सबसे बेकार अनुभव रहा।
लेकिन my best experience have been associated with other people too.
लेकिन मेरा सबसे अच्छा अनुभव भी दूसरे लोगों के साथ ही रहा।
Such deep friendship I've experienced.
बहुत गहरी मित्रता का मैंने अनुभव किया।
Well, like with Kumarji.
कुमारजी के साथ।
Such strong work together.
बहुत अच्छा काम मैंने दूसरों के साथ किया।
Such good feelings shared together.
एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी भावनाओं को मैंने बांटा।
Such a powerful effect on the world around for the good.
अच्छे के लिए आप बाहर की दुनिया पर अच्छा परिणाम भी मैंने देखा है।
So yes, my worst experiences and my best experiences have mainly been associated with other people.
तो इसलिए मेरा अच्छा अनुभव, सबसे अच्छा और सबसे बुरा अनुभव दूसरे लोगों के साथ काम करने में मुझे मिला।
Probably the same for most of you.
हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों का ही ऐसा अनुभव।
Other people are hell. Are hell.
दूसरे लोग नरक हैं।
Other people are heaven.
दूसरे लोग स्वर्ग भी हैं।
So clearly, how we relate to other people and how we relate together in society makes a difference between heaven and hell.
तो हम दूसरों के साथ किस तरह से संबंध प्रस्थापित करते हैं, समाज के साथ कैसा संबंध प्रस्थापित करते हैं, इसी से तय होता है कि हम उसे स्वर्ग बनाते हैं या नरक बनाते हैं।
So during these days, we're trying to relate to each other in a way that benefits us all.
तो हम इन दिनों में दूसरों के साथ में इस तरह से अपना संबंध प्रस्थापित करेंगे ताकि हम सबको उसका फायदा हो।
We're trying to create together a sort of ideal society, at least for a few days.
तो कुछ दिनों के लिए हम एक आदर्श समाज यहाँ निर्माण करने की कोशिश करें।
And we're drawing on inspiration from two great figures in Indian history.
तो भारतीय इतिहास से दो महान ऐसे जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनसे ये प्रेरणा हम लेने वाले।
Well, the Buddha is for us Buddhists the greatest human being that ever lived.
तो बुद्ध इस दुनिया में सबसे महान ऐसे मनुष्य थे।
And the 20th century, I think Dr. Ambedkar is perhaps the most outstanding figure.
और 20वीं सदी में डॉक्टर अंबेडकर जो है वो शायद सबसे अलग ऐसी हस्ती बनी।
Certainly for India, he's the outstanding figure of the 20th century.
खास करके भारत के लिए वे 20वीं सदी के बहुत ही विशेष व्यक्ति रहे।
And both these great figures had a lot to say about human society.
और इन दोनों महान व्यक्ति जो है वो मानवीय समाज के लिए बहुत कुछ बताते हैं।
They had a lot to say about the way we relate to each other. The both the Buddha and Baba Sahib had a lot to say about the way we relate to each other.
तो बुद्ध और बाबा साहब हम एक दूसरे के साथ कैसा संपर्क स्थापित करते हैं इसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं।
They both had an idea of an ideal society.
आदर्श समाज कैसे होना चाहिए इसके बारे में दोनों की कुछ कल्पनाएं हैं।
So this morning I'm going to tell you a little bit about their ideas concerning human society.
तो आज उनकी जो कल्पनाएं हैं मानवीय समाज के बारे में वो मैं कुछ आपको बताऊं।
And I'm saying this morning so that you can see what value it's got for you.
तो आज मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपके लिए इसका क्या महत्व है ये आप समझ पाओगे.
And I mean, what value it's got for you now in this situation.
और आपके लिए इस परिस्थिति में उसका क्या महत्व है? ये आप पहचान पाएंगे.
And then, what value it has for you when you leave here during the rest of your life?
और यहाँ से जब आप जाएंगे, तो पूरे जीवन भर के लिए उसका क्या महत्व है आपके लिए? ये आप पहचान पाएंगे.
So let's start with Dr. Babasaheb Ambedkar.
तो हम बाबा साहब अम्बेडकर से शुरू करते हैं.
For most of us, he's the reason why we're here.
तो यहाँ पर आप जो भी लोग आए हुए हैं, ज्यादातर लोगों के लिए उनकी वजह से आप यहाँ पर आए.
It's because of Baba Sahib that most of you have got education, got the opportunity of jobs.
तो आप में से ज्यादातर लोगों को शिक्षा मिली है उनकी वजह से और अच्छी नौकरियों का मौका भी मिला.
It's because of his inspiration that most of you have come to the Buddha Dhamma.
उनकी प्रेरणा की वजह से आप में से ज्यादातर लोग बुद्ध धर्म में आए हैं.
So clearly what he has to say about human society is of the greatest possible interest to us.
तो मानवीय समाज के बारे में उन्होंने जो कुछ सिखाया है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है.
So what was Baba Saheb's vision of human society?
तो बाबा साहब की मानवीय समाज की दृष्टि क्या है?
Well, you all know this.
तो आप सभी ये जानते हैं.
Three words, तीन शब्द.
तीन शब्द है.
One, liberty. Two, equality. Three, fraternity. Yes. This was Baba Saheb's view of the perfect society.
तो बाबा साहब का ये परिपूर्ण समाज का दृष्टिकोण.
It was a society in which liberty, equality, and fraternity were available for all.
तो ये ऐसा समाज वो चाहते थे जहाँ पर समता, स्वातंत्र, समता और बंधुता ये सभी सभी के लिए उपस्थित हो.
Well, Salim lives in France.
ये सलीम फ्रांस में रहते हैं.
And on every French coin, you'll see the words in French: liberty, equality, fraternity.
तो वहाँ का जो हर पैसे जो होते हैं, उसमें हर पैसे पर समता, स्वतंत्रता, बंधुता लिखा हुआ होता है.
Because in France in the 18th century there was a revolution in which they tried to establish those principles.
क्योंकि फ्रांस में 18वीं सदी में क्रांति हुई थी और उस क्रांति में इन्हीं तत्वों को उन्होंने लाने की कोशिश की.
But Baba Saheb said he didn't get these principles from the French Revolution.
लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि फ्रेंच राज्य क्रांति से उनको ये तत्व नहीं मिले.
He said, I get them from my master the Buddha.
वो कहते हैं कि मेरे गुरु बुद्ध से मुझे ये मिला हुआ.
So for Baba Saheb, liberty, equality, and fraternity were very, very deep human, even spiritual principles.
तो बाबा साहब के लिए समता, स्वतंत्रता और बंधुता ये बहुत ही गहरे ऐसे आध्यात्मिक तत्व थे.
So what were they in his understanding?
तो उनकी समझ के अनुसार वो कैसे थे?
And remember that they're not abstract principles for a constitution.
तो इस बात को हम याद रखेंगे कि केवल संविधान में रखे जाने वाले कुछ ऐसे तत्व वे नहीं.
Yes, those three principles together with justice are in the preamble to the Indian Constitution.
तो ये तीन तत्व, उसमें न्याय का एक चौथा तत्व भी है, वो हमारे संविधान के पृष्ठभाग है.
And Baba Saheb made them the guiding principles of the Constitution of the Republic of India.
और बाबा साहब ने भारत के संविधान के एक मार्गदर्शक तत्व के रूप में उन तत्वों को लिखा हुआ.
But liberty, equality, and fraternity are not just to do with law, not just to do with constitution.
लेकिन समता, स्वतंत्रता और बंधुता ये केवल कानून से संबंधित नहीं है, केवल संविधान से संबंधित नहीं है.
They're to do with the way we relate to each other right now.
तो ये ऐसे तत्व है इस घड़ी में हम एक दूसरे के साथ कैसा संबंध प्रस्थापित करते हैं इससे संबंधित.
We can practice liberty, equality, and fraternity during these few days.
तो इन दिनों में हम लोग समता, स्वतंत्रता और बंधुता का अभ्यास कर सकते हैं.
So what is liberty?
तो स्वतंत्रता क्या है?
Liberty means, of course, on the one side, being free to live the kind of life that is most fulfilling for you.
तो स्वतंत्रता इसका मतलब इस तरह का जीवन जीना, इस तरह का जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता होना, ताकि ऐसा जीवन आपको पूरी तरह से समाधान दे सके.
Well, obviously, for Baba Saheb, this was a critical issue.
बाबा साहब के लिए ये काफी महत्व का विषय.
In India, in his time, and it's still true today, people are not free to live the life that fulfills them most.
तो आज भी उनके समय में भी और आज भी बहुत सारे लोगों के लिए अपने ढंग से जीवन जीना संभव नहीं।
For instance, people aren't free to live wherever they want.
उदाहरण के लिए जहां वो रहना चाहते हैं वहां रहने के लिए लोग स्वतंत्र नहीं।
70% of Indians live in villages.
70% भारतीय गांव में रहते हैं।
And people have to live where their own community lives.
लोगों को वही रहना पड़ता है जहां उनकी स्वयं की जाति जो है रहती है।
Even when they come into the cities, they still need to live with their own communities.
अब भारत वो जब शहर में आते हैं, शहर में आने के बाद भी अपने समाज के, अपने जाति के लोग कहाँ हैं, उनके बीच में वो जाकर उनको रहना है।
People aren't free to do the work they want to do.
लोग जो काम करना चाहते हैं, उसके लिए भी स्वतंत्र नहीं।
Obviously, it's been a huge change because of Baba Saheb's constitution.
अब बाबा साहब ने संविधान लिखने की वजह से इसमें काफी परिवर्तन हुआ है।
But still in the villages. Most people are confined by their old caste dhamma.
लेकिन गांव में आज भी लोग अपने जाति के ही माध्यम से विभाजित होते हैं।
Even in the towns, it's the same.
अभी शहरों में भी, छोटे कस्बों में भी वही की बात।
Somebody mentioned to me yesterday that they've been told that, well, caste isn't really practiced in the towns.
अभी कुछ लोगों को बताया गया था कि शहरों में जाति का पालन कोई नहीं करता।
But it's well known that most of the sweepers in the municipalities of India are from sweeper community.
तो ये सबको पार जानते हैं कि बहुत सारे जो झाड़ू लगाने का काम करते हैं वे सभी भंगी समाज से ही आते हैं।
So caste still operates.
इसलिए जाति तो इसमें भी कार्य तो है।
You have to do the job that your caste dictates.
तो आपकी जाति ने आपको जो काम दिया है उसी को आपको करना होगा।
Not free to marry who you want.
जिसके साथ शादी करना चाहते हैं उसके साथ शादी करने के लिए भी स्वतंत्रता नहीं होती।
In the end, caste is shadi.
अंत में जाति में ही शादी होती।
That's what it really comes down to.
अभी इतना ही होता है, जाति है और शादी।
And I know that some of my friends have married people from different communities, and I've had to help them to make things all right.
तो मेरे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने अलग जाति के लोगों के साथ शादी की, तो सब ठीक ठाक करने के लिए मुझे खुद उनको मदद करनी पड़ी।
Some of them are here today.
उनमें से कुछ लोग यहाँ पर हैं।
It's generally still quite difficult to marry whoever you want.
तो जिससे भी शादी करना चाहते हैं उनके साथ शादी करना आज भी कठिन।
So people are not still free.
तो लोग अभी भी इतने स्वतंत्र नहीं।
It's a lot freer than it was in Baba Saheb's time.
बाबा साहब के जमाने में जितनी स्वतंत्रता थी अभी उससे ज्यादा है।
Or at least a lot more people are a lot more free.
या तो हम बोल सकते हैं कि ज्यादातर लोग थोड़े ज्यादा मुक्त हुए हैं।
But many, many people are still strongly restricted by caste identity.
लेकिन ज्यादातर लोग जो है जाति से ही काफी बंधित होते हैं।
So in when there's real liberty, people are able to follow their own inspiration, their own inclination, as long as it doesn't harm others. When there's real liberty, people are able to follow their own inclination, so long as it doesn't harm others.
तो जब सही स्वतंत्रता होती है, लोग अपने स्वतंत्रता का पर्याप्त उपयोग करते हैं, इतना ध्यान रखते हुए कि दूसरों को कोई नुकसान ना।
And for Baba Saheb, this is what a modern society, an ideal society, should be like.
और बाबा साहब चाहते हैं कि ऐसा ही आदर्श समाज होना चाहिए।
But there's another side to it.
उसका और भी दूसरा एक हिस्सा है।
What is it that prevents स्वतंत्र?
तो ऐसी कौन सी बात है जो स्वतंत्र होने से रोकती?
Well, it's where some people stop other people from living the kind of life they want to live.
कुछ लोग दूसरे लोगों को रोकते हैं स्वतंत्रता से जीवन जीने के।
So there's a kind of violence.
तो यहाँ ऐसी कोई हिंसा भी निर्माण होती
है। There's an oppression, a pressure upon people.
किसी तरह का दबाव लोगों पर आता है।
And of course that operates very much. Yes. So what prevents freedom is violence.
तो स्वतंत्रता को रोकने वाला अगर कुछ है तो वह हिंसा है।
Where some people force others.
जहां कुछ लोग दूसरों पर कुछ जबरदस्ती करते हैं।
They restrict them. They force them into certain kinds of behavior and so on.
कुछ लोग दूसरों पर कुछ बंधन निर्माण करते हैं और विशिष्ट तरह से जीने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं।
And that's really what the caste system consists in.
और इसी को हम जाति कहते हैं।
But we each of us need to consider our own role.
लेकिन हम में से हर एक को अपनी स्वयं की भूमिका के बारे में सोचना चाहिए।
To what extent do we let others be free?
कितनी मात्रा में हम दूसरों को स्वतंत्रता देते हैं?
To what extent are we violent towards others?
कितनी मात्रा में हम दूसरों के प्रति हिंसा का व्यवहार करते हैं?
To what extent do we encourage others to fulfill themselves in the way that's best for them?
कितनी मात्रा में हम दूसरों को सहायता करते हैं ताकि वह स्वयं आनंद उठाए उसमें पूर्णता प्राप्त करे।
So liberty is something immediate for us.
इसलिए स्वतंत्रता एक ऐसी बात है जो तुरंत हमें इसकी जरूरत है।
It's not just to do with society as a whole.
ये पूरे समाज की बात है, ऐसी बात नहीं है।
It's to do with our immediate relations with each other, even here.
यहाँ पर आपस में हमारे जो संबंध है उसके साथ इसका संबंध है।
So Baba Saheb considered liberty to be, as it were, at home as well as in society.
तो बाबा साहब स्वतंत्रता को इस तरह से देखते हैं कि आपके घर में भी स्वतंत्रता होनी चाहिए और समाज में भी होनी चाहिए।
In a way, you could say liberty begins at home.
तो आप ऐसा कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की शुरुआत आपसे होती है।
So we'll be exploring this theme further.
तो इसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे।
For instance, non-violent communication is about liberty.
तो उदाहरण के लिए अहिंसा का संवाद जो है वो एक तरह से स्वतंत्रता के लिए।
It's finding liberty for yourself, finding liberty for others.
ये स्वयं के लिए स्वतंत्रता खोजना है, दूसरों के लिए स्वतंत्रता खोजना है।
And we've got some experts here in that and other skills.
तो इसमें कुछ तज्ञ लोग हमारे पास में हैं, अन्य विषय में भी वो तज्ञ हैं।
So what a wonderful society it would be where people really felt free.
तो वो कैसा समाज होगा जहाँ पर हर एक को वो स्वतंत्रता का अनुभव होगा।
People are able to fulfill themselves in the way that was best for them.
और लोग अपने को जिस तरह से चाहिए वैसी स्वतंत्रता से अपने अंदर पूर्णता ला सके।
People are able to live the kind of life that really suits them.
जिस तरह से जीवन जीना उनको अच्छा लगता है उस तरह से वो जी सके।
So there's a lot of work to do to bring this about.
और इसलिए यह सब निर्माण करने के लिए बहुत काम करने की जरूरत है।
So then there's equality.
उसके बाद में है समानता।
Well, a caste society is by definition an unequal society.
तो जाति की जो समाज है वो मूल रूप से विषम मतलब विषम ऐसा समाज है।
बाबा साहब called it a system of graded inequality.
बाबा साहब उसको एक क्रमिक असमानता की रचना कहते हैं।
So if you've got that, you haven't got equality.
तो अगर ऐसा समाज है तो समानता यहाँ नहीं।
So what does equality mean?
तो इस समानता का अर्थ क्या है?
It means seeing other human beings just as human beings.
इसका मतलब यह है कि दूसरे मनुष्यों को केवल मनुष्य करके देख।
It means when you meet another citizen, you just see human being.
तो इसका मतलब यह होता है कि दूसरे नागरिक को जब भी आप मिलते हैं तो उसको आप केवल मनुष्य करके देखते हैं।
In India, well, people are identified very strongly with their community, with their caste.
भारत में लोग अपने आप को सबसे ज्यादा अपनी जाति से संबंध बताते हैं।
I often say that coming from the West, coming from out of India, this is quite strange.
तो अभी पश्चिम के देशों से आने से भारत के बाहर से आकर मुझे ये बात बड़ी विचित्र लगती है।
We have our own prejudices, we have our own inequalities.
हमारी स्वयं की कुछ भ्रम है या हमारी स्वयं की कुछ असमानताएं हैं।
But we don't have caste.
लेकिन जाति हमारे यहाँ नहीं।
We don't know how to tell caste.
हम ये भी नहीं जानते कि किसी की जात कैसी पहचान है।
After 20 years in India, I'm beginning to learn what the names mean.
तो 20 साल भारत में बिताने के बाद अभी थोड़ा थोड़ा मैं समझ रहा हूँ कि नाम से क्या फर्क पड़ता है।
हाँ, कमले।
ये कमले
है। I know where that comes from.
अभी मुझे मालूम है ये किस जाति का है।
जोशी।
Joshi.
I know where that comes from.
मुझे मालूम है कि ये कहाँ से आया।
Chatterjee, whatever.
Chatterjee, बकरे
बकरे। हाँ, you immediately hear the name, you know what community.
आप नाम सुनते हैं और किस जाति का है आप पहचानते हैं।
And everybody in India is an expert in this.
भारत का हर इंसान इसमें बिल्कुल निष्णात है।
And when you meet somebody, you know how to find out what their community is.
तो जब भी आप किसी को मिलते हैं, आप जानते हैं कि उसकी जाति कैसे पहचानते
हैं। I've said this so often, many of you probably heard it. Indians have got one extra sense.
तो कई बार मैंने ये कहा है, शायद आपने भी सुना होगा कि भारतीय लोगों को एक ज्यादा का इंद्रिय है, ऐसा मैं बता
दूं। We English, we just got 5 senses.
अभी हम जो अंग्रेजी देशों से लोग आते हैं हमको केवल 5 इंद्रिय होते हैं।
You know, the usual ones.
जो हमेशा वो होते हैं।
But in India, there's an extra sense.
भारत में और एक ज्यादा इंद्रिय है।
caste
says.
An ability to tell what caste people come from. I spent so much time in India, I'm beginning to get this sense myself. In other words, when you meet somebody else, you're immediately trying to place them.
दूसरे शब्दों में जब आप दूसरे किसी को मिलते हैं तो पूरा ना उसकी जगह नीचे है या ऊपर है ये आप देखने की कोशिश
करें। Even if you're not doing it, but they're likely to do it to you.
भले ही आप नहीं करोगे वो तो कम से कम ऐसा करेंगे।
So Baba Sahib said, well, this is inequality defined.
तो बाबा साहब कहते हैं कि ये असमानता है।
We just need to meet each other as fellow citizens.
हम एक दूसरे को एक अपने भाई जो नागरिक है इस ढंग से मिलना चाहिए।
Just as fellow human beings.
जैसे कोई अपने जैसे ही इंसान है इस रूप से मिलना
चाहिए. That's equality.
इसको हम समानता.
That's the first step in equality.
समानता की ये पहला चरण है.
And of course there should be equality of opportunity as far as possible.
तो जितना संभव है उसके बाद जो मौका होता है उसके लिए स्वतंत्रता समानता होनी चाहिए.
Just because somebody is born into a particular community shouldn't mean that they can't take education and so on.
तो केवल किसी जाति में आपका जन्म हुआ है इसलिए आप शिक्षा नहीं पा सकते ऐसी बात नहीं होनी चाहिए.
But yes, in an ideal society, everybody's just a human being.
तो जो आदर्श समाज होता है उसमें हर इंसान मनुष्य होता है.
And of course, this is especially important between men and women.
और खास करके स्त्री और पुरुषों के बीच ये बहुत ही महत्वपूर्ण है.
Because we don't just have the graded inequality of caste.
क्योंकि यहाँ केवल जाति की ही ऊंच नीचता नहीं है.
In India, there's inequality between men and women.
भारत में स्त्री और पुरुषों में भी असमानता.
And Baba Sahib wanted to overcome that inequality too.
और बाबा साहब चाहते थे कि ये भी असमानता जो है इसको हमें दूर करना है.
And this is very much an inequality that we need to overcome at home.
और ये ऐसी असमानता है जिसको हमने घर से नष्ट करना चाहिए.
We need to be sure to treat men and women in the same way as regards education and so on.
तो स्त्री और पुरुषों को हर ढंग से हमने समान मौका देना चाहिए समानता देनी चाहिए.
So there should be equality, Baba Sahib says.
तो बाबा साहब कहते हैं कि वहाँ समानता होनी चाहिए.
And equality comes down to just seeing people as human beings.
तो समानता जो है उसका मूल तत्व ये होता है कि दूसरों को केवल मनुष्य करके देखना.
But there needs to be fraternity too.
इसके साथ में बंधुत्व भी होना चाहिए.
Of course, the word fraternity, bandhutva, comes from bandhu.
तो अभी ये शब्द बंधुत्व जो है वो बंधु से बंधु से आया.
And some friends were asking me why we use that term.
तो कुछ मित्र मुझे पूछ रहे थे कि ये शब्द आप क्यों उपयोग करते हैं.
So we should have bandhutva.
Bandhutva.
Bandhutva as well. Bandhu and I can't just. We should be clear, it's not just about men.
तो इसको हमने स्पष्ट रखना चाहिए कि ये केवल पुरुषों के लिए ही नहीं
है. It's about just human beings having feelings of warmth and respect for each other.
तो ये सभी मनुष्यों की आपस में एक मैत्री की और करीब की भावना.
In a caste-based society, you see people from a different community as you don't really see them fully as human beings.
तो जब जाति समाज होता है जातियों का समाज होता है दूसरे जाति के लोगों को आप अपने ही जैसे मनुष्य करके नहीं देखते.
You know you have this expression in Marathi, आपले लोग.
मराठी में ये शब्द आप उपयोग करते हैं आपले लोग.
You have it in Hindi, अपने लोग too.
Yeah, हमारे लोग.
When you say that, well, I heard people saying this.
अभी मैंने बहुत बार सुना है लोगों को ये शब्द उपयोग करते हैं.
And I didn't know what they were referring to.
अभी मुझे समझ में नहीं आता था कि ये किन के बारे में बात कर रहे
हैं. Our people it means. अपने लोग. Our people.
इसका मतलब अपने लोग.
अपने लोग मतलब अपने लोग.
अपने लोग मतलब अपने
लोग. So well, who are our people?
तो ये अपने लोग कौन हैं?
Our caste.
अपनी जाति.
That's what it means.
इसका यही मतलब.
So it's our people and not our people.
तो हम फिर भेद करते हैं कि ये अपने लोग हैं और ये अपने लोग नहीं.
So in that caste-based society, there isn't a sense of fraternity running all the way through society.
इसलिए जाति से पीड़ित जो समाज है उसमें बंधुत्व जो है मैत्री जो है वो सभी के लिए समान नहीं होती.
And Baba Sahib wanted to bring to India a kind of fraternity where everybody's related in a positive, respectful way to everybody else.
तो बाबा साहब भारत में ऐसा समाज चाहते थे कि जो सभी को सकारात्मक रूप से एक दूसरे के साथ संबंध रखने के लिए मदद करे।
So there are links of trust and cooperation between every section of society.
ताकि समाज के हर हिस्से में आपस में संबंध होना चाहिए और संपर्क होना चाहिए।
So the whole of society is sort of knitted together by these feelings of trust, of friendship, of reverence and respect.
ताकि पूरा समाज जो है आपस में एक विश्वास मित्रता और सम्मान जो है एक दूसरे का उससे भरा हो।
So we got a bit of an idea of what Baba Sahib wanted to bring to India.
तो बाबा साहब भारत को किस तरह से देखना चाहते हैं उसकी छोटी सी कल्पना आपको अभी आई होगी।
Liberty, equality and fraternity.
तो समता स्वतंत्रता समता और बंधुता।
And he saw that primarily as an issue of getting rid of caste.
और मूलतः जाति को नष्ट करके ही ऐसा निर्माण कर सकते हैं ऐसा उनको लगता है।
There are other problems, of course.
अभी बाकी समस्याएं भी हैं।
Class is a question.
जो क्लास है वो भी समस्या है।
Religious community is a question.
जो धार्मिक समूह है वो भी एक सवाल।
There are many other issues too.
बहुत सारी अन्य भी समस्याएं।
But in the first place, in India, caste is the great barrier to liberty, equality, and fraternity.
लेकिन सबसे पहले भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता के लिए जाति जो है सबसे बड़ी समस्या है।
And this Baba Sahib wanted to get rid of.
और बाबा साहब चाहते थे ये नष्ट होनी चाहिए।
He wanted to create a casteless India.
वो चाहते थे कि भारत जो है जाति विहीन होना चाहिए।
This was his great task.
और ये उनका सबसे बड़ा कार्य है।
That I hope is what we all want to produce.
और मुझे यही आशा है कि हम सभी इसी को निर्माण करना चाहते हैं।
Just imagine if you felt completely free to do what was best for you.
तो कल्पना कीजिए कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आप जो करना चाहते हैं उसके लिए।
Just imagine if you just felt yourself to be the equal of every other person you met.
कल्पना कीजिए कि आपको ऐसा महसूस होता है कि बाकी सभी मनुष्यों के साथ आप भी समान हैं।
Just imagine if you felt there were no barriers between you and others.
अभी ये भी आप सोचिए कि आपके दूसरों के बीच में ऐसा कोई भेद नहीं है।
You felt linked to everybody else.
आपको ऐसा लगे कि आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं।
What a wonderful society that would be.
और ये कितना सुंदर ऐसा समाज।
This was the society that Baba Sahib wanted to bring about for India.
और यही समाज बाबा साहब भारत के लिए बनाना चाहते।
He embodied those principles in the constitution.
उन्होंने संविधान में इन तत्वों को स्थापित किया।
But it's not enough.
लेकिन ये इतना पर्याप्त नहीं है।
There's so much work to be done to make the constitution effective.
तो बहुत सारा काम करना जरूरी है ताकि जो संविधान है वो मजबूत हो।
And in a way, that's the work we're doing here.
तो एक तरह से ये कार्य हम यहाँ कर रहे हैं।
By coming together during these days, we're going to try to make Baba Sahib's dream come a little bit more into life.
तो इन दिनों में बाबा साहब का ये सपना जो है इसको और थोड़ा जीवित करने की हम कोशिश कर रहे
हैं। I'm the serious bit of this program.
You are the serious.
I'm the serious bit of this.
So इस कार्यक्रम का मैं थोड़ा सा गंभीर हिस्सा हूँ।
We've got the fun bit of the program over here.
इस कार्यक्रम का और आनंद वाला हिस्सा भी यहाँ पर है।
I might get more funny as time goes on.
जैसे आगे समय जाएगा मैं भी कुछ और मतलब
But today I feel quite so serious.
लेकिन मैं थोड़ा गंभीर महसूस कर।
I think these are such important issues. I just want to put them out so that we're all clear about them.
तो ये बहुत ही महत्व का विषय है और इसलिए हम चाहते हैं कि ये सबको सबके सामने खुला हो।
But I'm sure that as the days go by, we'll experience more and more of the liberty, equality, and fraternity that Baba Sahib wanted.
लेकिन जैसे दिन आगे बढ़ेंगे हमें विश्वास है कि बाबा साहब जिस तरह से समता स्वतंत्रता चाहते थे वो और भी सामने खुला हो जाएगा।
बाबा साहब आइडेंटिफाइड दिस विद डेमोक्रेसी।
बाबा साहब ने इसको लोकशाही के साथ में जोड़ा।
He said democracy isn't just about parliaments and elections and so on.
बाबा साहब कहते हैं कि लोकशाही ये केवल पार्लियामेंट या चुनाव वगैरह से संबंधित नहीं
है। But we know this.
और हम ये जानते हैं।
Just recently, the governments of our countries, of Jane and my countries, and Anne's invaded Iraq.
अभी हाल ही में कुछ समय पहले मेरा देश और जेन और एन का देश जो है दोनों ने मिलकर इराक पर आक्रमण किया।
We didn't do it personally.
हमने खुद नहीं किया।
At least I didn't. I don't know about you. In fact, fact, I didn't approve at all of that action.
तो इस घटना को मैं स्वयं बिल्कुल पसंद नहीं करता.
The French withheld.
अभी फ्रेंच लोगों ने इस युद्ध से वो बाहर गए.
But they really thought they were going to bring democracy to Iraq.
लेकिन उन्होंने यही सोचा था कि इराक में वो लोकशाही लाने वाले.
That's a sad thing. They really meant well.
अभी उनका उद्देश्य बहुत ही अच्छा था, ये बहुत दुख की बात.
But democracy doesn't just come from having a democratic constitution.
तो लोकशाही जो है केवल लोकशाही का संविधान बनाने से लोकशाही निर्माण नहीं होती.
It's a pity that George Bush and Tony Blair didn't read Dr. Babasaheb Ambedkar.
अभी दुख की बात है कि जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर ने बाबा साहब को नहीं पढ़ा.
Needed before they could bring democracy.
तो शायद बाबा साहब ने उनको सिखाया होता कि लोकशाही अच्छी तरह से लाने के लिए क्या किया जाए.
Democracy is not merely constitutional.
तो लोकशाही जो है वो केवल संविधान से संबंधित नहीं होती.
It's a state of relationships between citizens.
तो ये नागरिकों का आपसी जो संबंध है उससे संबंधित है.
And in the end, it's about maitri.
और अंत में ये मैत्री.
There needs to be a sense of maitri between citizens.
तो नागरिकों के बीच में मैत्री होनी चाहिए.
If you've got maitri, then democracy can come about.
और अगर आपके बीच आपस में मैत्री है तो जो लोकशाही है वो निर्माण होगी.
Maitri means loving kindness. So yes, if there is that mood, that spirit of maitri amongst many, many citizens, democracy just comes into existence.
तो लोगों के बीच में, नागरिकों के बीच में जितनी ज्यादा मैत्री होगी उतनी लोकशाही आगे बढ़ेगी.
So that's Baba Saheb's vision.
और ये बाबा साहब की दृष्टि.
A democracy in which liberty, equality and fraternity are the spirit of the nation.
तो ऐसी लोकशाही जिसमें समता, स्वतंत्रता और बंधुता ये अपने राष्ट्र के चैतन्य होने चाहिए.
And that's all underlined by the spirit of maitri.
और ये सब जो है इनके अंदर जो है मैत्री का चैतन्य होना चाहिए.
And that's what we're trying to produce here.
और यही हम यहाँ निर्माण करने वाले.
That's I hope what your network of Buddhist youth is going to be.
और आपका जो बौद्ध युवकों का जो नेटवर्क है वो भी इसी वजह से होगा.
I hope it's going to be the expression of this vision of Baba Saheb.
और मुझे आशा है कि ये बाबा साहब की इस दृष्टि का एक प्रकटीकरण होना चाहिए.
So that's Baba Saheb's vision.
तो ये बाबा साहब की दृष्टि.
What about the Buddha?
अभी बुद्ध की क्या है?
So I know that most of you will know quite a lot about the Buddha.
तो मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग बुद्ध के बारे में बहुत जानते हैं.
You at least know Buddha Saranam Gacchami.
कम से कम बुद्ध शरणं गच्छामि आप जानते हैं.
You know Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami.
तो आप बुद्ध शरणं, धम्म शरणं, संघम शरणं गच्छामि जानते हैं.
Well, it was through the Buddha Dhamma that Sir Baba Saheb hoped to bring democracy to India.
तो बाबा साहब की आशा यही थी कि बुद्ध धर्म के माध्यम से भारत में लोकशाही लाई जा सके.
Tomorrow I'll explain more about why he thought this was the way to do it.
तो कल मैं और थोड़ा स्पष्टीकरण करूंगा कि ये ऐसा उन्होंने क्यों सोचा.
But today I want to explore a little bit with you the Buddhist vision of human relationships of human society.
तो आज मैं आपको संक्षेप में बौद्ध दृष्टि क्या है एक मानवीय संबंध की, मानवीय समाज के बारे में.
In many ways it's simply what Baba Saheb I've already told you Baba Saheb thought.
तो कई अर्थ से बाबा साहब ने जिस ढंग से बनाया बताया है उसी ढंग की वर्णन.
That's why Baba Saheb chose the Buddha Dhamma.
और इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध धर्म का चयन किया.
But what do we mean by the Buddha Dhamma in this right way?
तो बुद्ध धर्म का मतलब क्या है?
The Buddha Dhamma has three principal elements.
बुद्ध धर्म के तीन प्रमुख तत्व.
बुद्ध धम्म संघ. Yes, of course you know that.
तो ये आप जानते हैं.
So what is the Buddha?
बुद्ध क्या है?
Who is the Buddha?
बुद्ध कौन है?
Well, first of all, the Buddha is a historical figure who lived 2,500 years ago here in India.
तो बुद्ध सबसे पहले वो ऐतिहासिक व्यक्ति है, 2,500 साल पहले जो भारत में जिए.
Many of us will consider him the greatest human being to have lived.
तो बहुत सारे लोग हम ये जानते हैं कि वो बहुत ही महान ऐसे मनुष्य हुए हैं पृथ्वी पर.
And he discovered the state of awakening.
और उन्होंने जागृत अवस्था की खोज.
He woke up from the dream of life.
तो इस जीवन का जो सपना है, इससे वो जाग गए.
The Buddha said, it's as if most of us are half asleep.
बुद्ध कहते हैं कि ज्यादातर हम एक तरह से आधे सोए हुए हैं.
I don't know whether you've ever seen somebody sleepwalking.
तो मुझे नहीं मालूम कि आपने शायद किसी को देखा होगा जो नींद में है, नींद में चल रहा.
I remember when I was at school, there was one boy in the dormitory where I was staying. He used to sleepwalk.
तो मैं याद मुझे याद है जब मैं पाठशाला में था तो मेरे कमरे में कुछ लड़के थे, उनमें से एक लड़का नींद में चलता था.
And he used to walk around with his eyes open but asleep.
उसकी आंखें खुली रहती थी, कमरे में वो चलता था लेकिन वो सोया हुआ रहता.
And he would do things but asleep.
वो कुछ काम भी करता था लेकिन वो सोया हुआ रहता.
You know, he'd go to a table and he'd start putting things on the table.
तो टेबल के पास जाता था, टेबल पे कुछ चीजें रखता था.
And you could go and have a conversation with him.
वहां जाकर आप उसके साथ बोल भी सकते थे.
But his answers wouldn't make any sense.
लेकिन उसके जवाब कुछ विचित्र ही होते.
He was just completely asleep.
क्योंकि वो पूरी तरह से नींद में होता था.
And you had to take him back to his bed, put him in the bed, and he would sleep.
और फिर से उसको वहां से उठाकर बेड में ले जाना पड़ता था, उसको बेड पे सुला दिया तो सो जाता.
So he wasn't really aware of where he was.
तो वो जानता नहीं था कि वो कहां पर है.
Well, the Buddha said, we're like that.
बुद्ध कहते हैं कि हम इस तरह से.
We don't really see the situation around us as it really is.
तो कहते हैं कि हमारे आसपास की परिस्थिति जैसी है वैसी हम नहीं देखते.
We think that it's one way, but actually it's different.
हम सोचते हैं कि ये इस तरह की है लेकिन वो अलग होती.
For instance, we think that it's going to last forever.
उदाहरण के लिए हम ये सोचते हैं कि ये सब जो कुछ है वो अनंत काल तक रहेगा.
Well, just a few days ago, I had my 60th birthday.
अभी कुछ समय पहले मेरा 60वां जन्मदिवस था.
And well, I was thinking, I remember when I was 20.
तो मैं सोच रहा था जब मैं 20 साल का था तब की मेरी याद.
When I was 20, 60 seemed as if it was 1,000 years away.
जब मैं 20 साल का था तो ये सोचता था कि 60 की उम्र मतलब हजारों साल दूर है.
I thought people who were 60 were like dinosaurs.
तो उस वक्त मैं इस तरह से सोचता था कि जो 60 साल के लोग डायनासोर जैसे हैं.
They're not, are they?
You can be.
Because I thought they were half dead already.
तो ये सोचता था कि आधे मर गए हैं.
Just fossils.
या वो कुछ जीवाश्म.
It just seems so, so far away.
तो ऐसा लगता था कि ये उम्र जो है बहुत दूर है.
But it was just yesterday.
लेकिन मेरे लिए ये कल की बात
है. I don't know what's happened to 40 years.
अभी 40 साल क्या हुआ मुझे कुछ पता है.
They just go so fast.
वो इतने तुरंत निकल गए.
But when you're young, you don't really realize that.
लेकिन जब आप युवक होते हैं तो इस बात को सही में नहीं समझते.
Even I, I'm making plans for next year.
अभी मैं भी अगले साल के लिए कोई नियोजन कर रहा.
And I have to remember very carefully, well, I don't know whether I'll be there.
तो मुझे बहुत ही ध्यान से ये याद करना पड़ता है कि पता नहीं शायद अगले साल मैं नहीं रहूंगा.
My friends are already making retreats for me to come and to give talks on and so forth.
मेरे कुछ मित्र जो है अभी से तैयारी कर रहे हैं कि अगले साल कौन से शिविर में मुझे बुलाना है.
I have to keep saying, well, I will come if I'm still alive. I don't know.
तो मैं यही कहता हूँ कि अगर जिंदा रहा तो मैं जरूर आऊंगा.
Because we think we're going to live forever.
हम इसी तरह से सोचते हैं कि हम बस अनंत काल तक जिएंगे.
So this is one of the most important things that the Buddha says we need to wake up from.
तो यही महत्व की बात है. बुद्ध कहते हैं कि इस तरह से हमें जागना चाहिए.
We need to realize that everything is impermanent.
हमने इस बात को समझना चाहिए कि हर बात अनित्य है.
Well, you know, in India itself is moving. Moving. Yeah. Just translate. Argue with me when I'm giving a talk. India is moving up into Central Asia, but I think it's about 1 centimeter every 50 years.
तो हर 50 साल में भारत की भूमि जो है सरक रही है 1 centimeter.
Can you feel it? India is moving right now.
महसूस करते हो अभी भी ये धरती हिल रही है.
It's pushing up into the Himalayas.
ये धरती जो है हिमालय में अपने आप को ढकेल रही है.
And all the time the Himalayas are growing.
और हर समय जो है हिमालय ऊंचा हो.
It seems so solid, doesn't it?
अभी तो देख रहे हैं इसको बहुत ही मजबूत पक्की लगती है.
It seems so fixed.
बिल्कुल पक्की है, स्थिर ऐसा लगता है.
But right now, even though we can't feel it or perceive it, geologists tell us India is moving.
तो भले ही हम इसको महसूस नहीं कर रहे हैं लेकिन भूगर्भ शास्त्र में हमें बताते हैं कि भारत हिल रहा है.
Well, like here we are in Maharashtra.
तो जैसे महाराष्ट्र में हम
you look at the rocks around here, they're all made of they're from volcano.
तो यहाँ की जो खड़क आप देखते हैं पत्थर देखते हैं वो वोल्केनो से आए हुए.
So millions of years ago, a huge volcano.
कई लाखों साल पहले बहुत बड़ा ज्वालामुखी हुआ.
And it created this landscape.
और इस भूमि को उस ज्वालामुखी ने निर्माण किया.
So all the time, everything's moving, everything's changing, everything's shifting.
तो हर क्षण समय जो है हर चीज जो है हिल रही है बदल रही है.
And that's particularly true of us.
और खास करके हमारे स्वयं के बारे में ये सच.
But we don't really realize this.
लेकिन हम इस बात को समझते नहीं.
We fix things. We think of them as permanent.
हम चीजों को पक्का बना देते हैं वो नित्य है ऐसा ही हम मान के चलते.
So the Buddha said that no, things are not like that.
लेकिन बुद्ध कहते हैं कि नहीं बातें ऐसी नहीं है.
And he said we need to wake up to the way things really are.
और वो कहते हैं कि वास्तव में जैसी चीजें हैं उसके प्रति स्वयं जाग जाइए.
That's what he did 2,550 years ago or so at Buddha Gaya in Bihar.
तो बिहार में बुद्ध गया में यही बात जो है बुद्ध ने 2,500 साल पहले.
And he said that waking up in that way set him free.
तो वे कहते हैं कि इस तरह से जागने की वजह से वह स्वयं मुक्त हो गए.
He felt free of all turbulence in the mind.
वो कहते हैं कि इसकी वजह से मन में जो जो तूफान है उससे वे मुक्त हो गए.
That meant he was free from all mental suffering.
इसका मतलब जो भी मानसिक दुख है उससे वो मुक्त हो.
All barriers went between him and others.
दूसरों के और उनके बीच जो भी बंधन थे वो टूट गए.
And he just felt love and fellowship with every other human being.
और दूसरे सभी मनुष्य के प्रति उनके मन में मैत्री प्रेम और बंधुत्व महसूस हुआ.
So the Buddha woke up.
तो बुद्ध इस तरह से जाग.
And he taught how we could wake up.
और उन्होंने ये सीखा कि हम कैसे जाग सकते.
This is very very important for us as Buddhists.
और बौद्ध करके हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज.
The Buddha isn't somebody completely beyond us.
बुद्ध मतलब हमसे परे है ऐसी बात नहीं है.
Every one of us can become like the Buddha.
हम में से हर एक इंसान बुद्ध के जैसा बन सकता.
The Buddha is not a god.
बुद्ध ईश्वर नहीं है.
The Buddha is not anything separate from a human being.
बुद्ध मनुष्यों से अलग नहीं.
He's a human being who's woken up.
वो मनुष्य है जो जाग गया है.
And because he's awake, he's free.
और उस जागने की वजह से वह मुक्त है.
And he's trying to help us to wake up.
और वे हमें सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं जागने के.
So the Buddha is our first ideal.
तो इसलिए बुद्ध हमारे पहले आदर्श.
When we bow to the Buddha, we're bowing to him as the great teacher who woke up.
तो जब हम बुद्ध को वंदन करते हैं हम इसलिए वंदन करते हैं कि वह हमारे महान ऐसे गुरु हैं जो पहले जाग गए.
And we're bowing to him as what we could be.
और इसलिए हम उनको वंदन करते हैं कि वैसे हम बन सकते.
We're bowing, saying, "I want to be like that."
जब हम उनको के सामने झुकते हैं, तो हम ये कहते हैं कि आपके जैसा मैं बनना चाहता हूँ.
I too want to wake up.
मैं भी स्वयं जागना चाहता हूँ.
I want to be free.
मैं स्वयं मुक्त होना चाहता
हूँ. I want to be beyond all this mental pain.
और ये सभी मानसिक वेदनाओं से, दुखों से मैं मुक्त होना चाहता हूँ.
I want to experience that great happiness and contentment that the Buddha has.
बुद्ध की जो महान ऐसा सुख है और संतुष्टि है उसको मैं अनुभव करना चाहता.
So that's the Buddha.
तो ये बुद्ध.
The first of what we call the three jewels.
तो तीन रत्नों में से पहला रत्न हम उसको कहते हैं.
You'll notice that some of us have these what are called cases around our necks.
तो आपने देखा है कि हम में से कुछ लोगों के गले में ऐसा केसा.
Some of us haven't brought ours with us.
कुछ लोगों ने अपना खुद का हाथ में नहीं लाया.
But all of us who are members of the Trilokya Bodh Mahasangha have these cases, and we sometimes remember to wear them.
So, हम जो त्रिलोक के बौद्ध महासंघ के जो सदस्य हैं, वो ऐसा केसा पहनते हैं और कभी-कभी याद रखते हैं पहनने की.
Sometimes we forget.
कभी-कभी हम भूल जाते हैं.
Sometimes we've even lost them.
कभी-कभी हम उसको गुमा देते हैं.
But anyway, these signify that we've committed ourselves to the Buddha Dhamma and the Sangha very deeply.
तो ये हम पहनते हैं वो इसका महत्व प्रतीक है कि बुद्ध धम्म संघ को हम बहुत गहराई से प्रतिज्ञाबद्ध हैं.
And you'll see three jewels on this केसा.
तो यहाँ पर इस केसा में आप तीन रत्न देखते
हैं। This is called a केसा।
ये जो पूरा है उसको केसा कहते हैं।
And you see a yellow jewel।
तो यहाँ पीले रंग का रत्न है।
That's the Buddha jewel।
तो वो बुद्ध रत्न है।
It's yellow like gold।
ये पीला है सोने का।
Gold is the most precious metal।
सोना जो है सबसे मूल्यवान ऐसा धातु।
At least historically it was।
कम से कम इतिहास में ऐसा माना जाता है।
So the Buddha is like gold।
तो बुद्ध सोने जैसे।
Then the next jewel is blue।
तो दूसरा रत्न जो है वो नीले रंग का।
But it's blue like the sky।
जो नीला रंग आसमान का।
When the sky is without any clouds, it's just vast।
जब आसमान में बादल नहीं होते हैं, वो बहुत विशाल होता
है। An infinite blue sky।
तो अनंत ऐसा नीला आकाश आप देखते हैं।
Well, that's the Dhamma jewel।
तो ये धम्म रत्न।
The Dhamma is the teaching of the Buddha।
धम्म ये बुद्ध की शिक्षा।
It's the teaching that takes you to awakening।
तो ये ऐसी शिक्षा जो आपको जागने के लिए सहायता करती है।
If you practice the Dhamma, you will become more and more like the Buddha।
तो अगर आप धम्म का अभ्यास करते हैं, आचरण करते हैं, तो आप बुद्ध के जैसे बनते जाएं।
And you'll realize the meaning of the Dhamma fully for yourself।
और फिर आप जो धम्म का महत्व जो है वो स्वयं आप जानते हैं।
And you'll plunge into that vast blue sky of the Dhamma।
और फिर धम्म के नीले आसमान में आप उड़ जाते हैं।
It's a bit like when you go in a plane।
जैसे कि आप आसमान में हवाई जहाज से उड़ते हैं।
I really love the point in when you go up in a plane when you break through the clouds।
तो मैं उस मोड़ को बहुत ही मजा लेता हूँ उसकी, जब विमान पे आप बैठे हुए हैं, उड़ रहा है और बादलों को काट के विमान ऊपर जाता है।
You know, I come from England।
अभी मैं इंग्लैंड से आया।
Well, we have a lot of clouds there।
इंग्लैंड में बहुत बादल।
Most of the time, there's clouds sitting over your head।
ज्यादातर टाइम समय जो है ये बादल आपके सर पे बैठे हुए रहे।
We have permanent monsoon।
हर समय मानसून रहता है।
It can rain at any time।
किसी भी समय बारिश हो सकती है।
There's often cloud overhead।
तो हमेशा आसमान में बादल होते
हैं। And when you take off in the airplane, you go through the clouds।
तो जब आप हवाई जहाज में बैठते हैं तो हवाई जहाज बादलों को काटकर ऊपर निकलता है।
Below the clouds, it's raining, it's dark, it's dull।
तो इस बादलों के नीचे जो है अंधेरा है थोड़ा सा और बारिश है।
But when you get through the cloud, suddenly the sun is shining, there's this beautiful blue sky above you.
लेकिन जब ये बादलों को काट कर आप ऊपर जाते हैं तो तुरंत आप देखते हैं कि सूरज चमक रहा है और बड़ा प्रकाश जो फैला हुआ है।
So as you practice the Dhamma, you experience more and more of that sense of brightness and space.
तो जैसे आप धम्म का आचरण करते हैं तो उस तरह का जो आकाश है उसका अनुभव आप करते हैं और जो प्रकाश है उसका आप अनुभव करते हैं।
So we go for refuge to the Dhamma, that means practicing the Dhamma, so we become more and more like the Buddha।
तो हम धम्म को शरण जाते हैं, इसका मतलब यह है कि हम धम्म का ऐसा आचरण करते हैं ताकि ज्यादातर हम बुद्ध के जैसा बन सकें।
So one more jewel।
और एक रत्न।
A red jewel।
ये लाल रत्न।
Well, red is the color of warmth, of Maitri.
तो लाल जो है ये मैत्री का प्रेम का प्रतीक।
Like a fire, like a flame.
जैसे अग्नि जो ज्वाला।
It warms you, it heats you.
उसकी वजह से आपको कुछ उष्णता मिलती।
So Maitri is like that.
तो मैत्री इस तरह की।
When you're in contact with Maitri, it warms you.
तो जब आप मैत्री के संपर्क में आते हैं तो आपको कुछ उसमें उष्णता मिलती।
So the red jewel is the Sangha jewel.
तो जो लाल जो रत्न है ये संघ का रत्न है।
Well, I know that in modern Indian languages, Sangha just means the society or association.
तो अभी आधुनिक भारतीय भाषा में संघ का मतलब जो है ये कोई संगठन इस तरह का होता है।
But in Buddhism, it has a very special and important meaning.
लेकिन बौद्ध धर्म में इसका बहुत विशेष और महत्व का अर्थ था।
First of all, it means all of those who follow the Dhamma and become like the Buddha.
इसका मतलब ऐसे लोगों का, ऐसे लोग जो धम्म का जिन्होंने आचरण किया और बुद्ध जैसे बने।
Because there are many, many people down the years who practice the Dhamma and realize the Buddha's truth.
क्योंकि कई सालों से बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बुद्ध की शिक्षा को अपनाया है और बुद्ध के जैसे बने।
That's the Sangha.
तो इसको हम संघ कहते हैं।
But the Sangha is also all of us who are trying to practice the Dhamma to any extent.
तो संघ मतलब हम सभी लोग जो सभी मिलकर आचरण करने की कोशिश कर रहे हैं।
So during these days we are a sangha.
तो इन दिनों में हम सभी एक संघ।
And a sangha is something quite special.
और संघ एक बहुत ही विशेष होता है।
Because we're all trying to awaken, because we're all trying to practice the Dhamma, we come very close to each other.
तो हम सभी जागने की कोशिश कर रहे हैं। हम धम्म का आचरण करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत करीब आते हैं।
We come into a much closer connection with each other.
तो हम एक दूसरे के साथ बहुत ही करीब का संपर्क प्रस्थापित करते हैं।
Because we're seeing each other essentially just as human beings who are capable of being the Buddha.
क्योंकि हम एक दूसरे को एक मनुष्य करके देखते हैं जो बुद्ध बनने की क्षमता रखते हैं।
So we're able to appreciate each other, we're able to feel maitri for each other.
ताकि हम एक दूसरे की प्रशंसा कर सके, एक दूसरे के बारे में मैत्री का अनुभव कर।
In other words, we're able to relate to each other on the basis of liberty, equality and fraternity.
इसका मतलब हम एक दूसरे के साथ समता, स्वतंत्रता और बंधुता के बुनियाद पर संपर्क स्थापित करते हैं।
We see every other human being as capable of being like the Buddha.
तो हम देखते हैं कि हर मनुष्य बुद्ध बनने की क्षमता रखता है।
So we feel our deep kinship with them.
और इस वजह से हम उनके साथ में बहुत ही गहरी एकता महसूस करते हैं।
We respect them because they have that potential to become like the Buddha.
हम उनका आदर करते हैं क्योंकि हर एक में बुद्ध बनने की क्षमता है।
And the more we're conscious of this, the closer we come to each other.
और जितने हम इस बारे में जागरूक होते हैं, उतने हम एक दूसरे के करीब आते हैं।
So it's a very special warmth, a very special affection that begins to grow when we try to practice the Dhamma together.
इसलिए जब हम एक साथ मिलकर धम्म का आचरण करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही मूल्यवान ऐसा संपर्क हम आपस में एक दूसरे के साथ प्रस्थापित करते हैं।
And that's what we're trying to achieve during these days.
और इन दिनों में हम इसी बात को हासिल करने की कोशिश।
We're trying to become more and more of a sangha.
हम ज्यादा ज्यादा मात्रा में संघ बनने की कोशिश करते हैं।
Where we're all trying to realize our potential to be like the Buddha.
और हम ज्यादा मात्रा में यही कोशिश कर रहे हैं कि बुद्ध बनने की हमारी जो क्षमता है उसको महसूस कर।
We're trying to do what's necessary to wake up.
जितना जरूरी है, आवश्यक है जागने के लिए, वो हम करने की कोशिश कर।
And that is what बाबा साहेब's ideal society is.
और यही बाबा साहब का आदर्श समाज है।
In the end, an ideal society is a sangha.
अंत में आदर्श समाज जो है संघ होता है।
At least to some extent.
कुछ मात्रा।
So here together we're working to be a sangha.
तो यहाँ साथ में मिलकर हम संघ बनने की कोशिश कर रहे हैं।
Here together we're trying to be a democracy.
यहाँ साथ में मिलकर हम लोकशाही निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं।
Here together we're trying to experience liberty, equality and fraternity.
और यहाँ साथ में मिलकर हम समता, स्वतंत्रता और बंधुता का अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं।
So these are very, very important key terms.
तो ये बहुत ही महत्व के विषय है।
I hope that I've made them a little bit clear to you.
मुझे आशा है कि मैंने आपको इन बातों को थोड़ा स्पष्ट किया है।
And I hope that you'll have the chance to experience those through whatever Jain and Kanya and others have to offer.
और मुझे आशा है कि जैन, कन्या, बाकी सब लोग जो कुछ आपको देने वाले हैं।
I hope you'll have the chance to experience these in action.
और मुझे आशा है कि प्रत्यक्ष कृति में इन बातों को आप अनुभव कर सकते।
Because the danger is they just remain as words.
क्योंकि धोखा यही है कि ये जो शिक्षाएं हैं केवल शब्द रह जाएं।
But Baba Sahib wanted something very real for his people.
लेकिन बाबा साहब अपने लोगों के लिए कुछ वास्तव में कुछ ठोस बात चाहते।
He wanted a quite different kind of India.
वे चाहते थे कि भारत जो है बहुत ही अलग भारत बने।
And it's up to us to try to bring that about.
और यह हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसा बना सकते।
It's only going to happen if people try and make the effort.
वो तभी होगा जब लोग प्रयास करने की कोशिश करें।
And that's what we're here together to try to do.
और यही करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आते हैं।
जय भीम।
जय भीम।